अगर मैं कहूँ कि 9/11 के हमले या जो हाल ही में आई वो भयानक ग्लोबल महामारी थी, उसका सीधा मनोवैज्ञानिक संबंध एक सेब खाने की हजारों साल पुरानी कहानी से है, तो शायद सुनने वाले मुझे पागल कहेंगे। मतलब
हाँ, वो सच में थोड़ा अजीब साउंड करता है पहली बार सुनने में।
बिल्कुल, मतलब एक तरफ दुनिया को हिला देने वाली इतनी बड़ी त्रासदियां हैं और दूसरी तरफ एक बहुत ही पुरानी जानी मानी कहानी। लेकिन आज हम जिस डीप डाइव पर जा रहे हैं वो डॉक्टर केनेथ मैथ्यूज के जो लेक्चर नोट्स हैं उन पर बेस्ड है,
और वो नोट्स उत्पत्ति या जेनेसिस की इस कहानी को एक ऐसे नजरिए से पेश करते हैं जो सच में हैरान करने वाला है।
एग्जैक्टली, ये सिर्फ एक गार्डन की कहानी नहीं है बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारे रिश्तों के टूटने और दुनिया में बुराई के आने का एक बहुत ही डीप एनालिसिस है।
डॉक्टर मैथ्यूज के नोट्स हमें सीधी इस बात पर ले जाते हैं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे काम करता है।
तो आज हम यही अनपैक करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये एंशिएंट टेक्स्ट आज की एंग्जाइटी और ट्रॉमा को एक्सप्लेन करता है। तो चलिए सीधे जंप इन करते हैं। शुरुआत होती है उस आइडियल स्टेट से जहां नोट्स चैप्टर 2 के आखिर में पुरुष और स्त्री के मिलन की बात करते हैं।
हाँ, वहां एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, लीविंग एंड क्लीविंग, मतलब छोड़ना और जुड़ना। इसका पर्पस सिर्फ एक बायोलॉजिकल परिवार आगे बढ़ाना नहीं था।
तो फिर क्या था? मतलब
ये एक ऐसा बॉन्ड बनाना था जो किसी भी कमर्शियल या सोशल ट्रांजैक्शन से बहुत ऊपर हो। इसे एक कवेनेंट या अनुबंध कहा गया है।
ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि देखो आजकल तो हम रिलेशनशिप्स को एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखते हैं।
बिल्कुल, 50-50 पार्टनरशिप वाला माइंडसेट।
हाँ, कि अगर तुमने अपना काम नहीं किया या अगर मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही तो भाई मैं भी पीछे हट जाऊंगा। मॉडर्न डेटिंग कल्चर इसी पर टिका है, लेकिन ये नोट्स जिस कोवेनेंट की बात कर रहे हैं वो कुछ अलग लग रहा है।
कॉन्ट्रैक्ट और कोवेनेंट में तो जमीन आसमान का फर्क है। कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस पर टिका होता है, ये खुद को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है।
एक सेफ्टी नेट की तरह।
एग्जैक्टली, लेकिन प्राचीन समय में और खास तौर पर इस टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में कोवेनेंट का मतलब था टोटल कमिटमेंट, एक ऐसा समर्पण जहां आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी को पीछे छोड़ देते हैं।
तो वो जो माता पिता को छोड़ना वाला हिस्सा है।
हाँ, नोट्स बहुत क्लियरली बताते हैं कि उसका मतलब माता पिता का अपमान करना या उन्हें अबैंडन करना नहीं है।
राइट,
इसका सीधा सा मतलब है अपनी प्राइमरी लॉयल्टी, अपनी सबसे पहली वफादारी अपने पार्टनर के लिए तय करना। एक नई एंटिटी बन रही है जो अब समाज का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगी।
क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे जैसे दो अलग अलग धातुओं को, दो मेटल्स को हाई टेम्परेचर पर पिघलाकर एक नया एलॉय बनाना?
ये बहुत ही बढ़िया उपमा है,
है ना? मतलब वो दोनों अपनी पुरानी फॉर्म और पहचान छोड़कर एक नई ज्यादा मजबूत चीज बन जाते हैं जिसे वापस अलग करना लगभग नामुमकिन है। आप उनमें से ओरिजिनल मेटल्स को अब अलग अलग नहीं निकाल सकते।
बिल्कुल, और उस दौर के समाज में ये विचार बहुत ही क्रांतिकारी था। उस समय कबीले या बड़े परिवार की लॉयल्टी हमेशा सबसे ऊपर होती थी।
ट्राइबल कल्चर, जहां इंडिविजुअल से ज्यादा पूरा कबीला मायने रखता था।
हाँ, लेकिन यहाँ हस्बैंड वाइफ के उस नए रिश्ते को कबीले से ज्यादा अहमियत देना उस वक्त के कल्चर के हिसाब से एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। ये बता रहा था कि समाज की असली ताकत उस नए कोवेनेंट में है।
और ये वो फेस था जहाँ सब कुछ परफेक्ट था। मतलब नोट्स में वो लाइन है कि वे नग्न थे लेकिन लज्जित नहीं थे।
कोई शर्म नहीं, कोई वल्नरेबिलिटी का डर नहीं।
आज के समय में तो कोई इंसान पूरी तरह से अपने सबसे करीबी इंसान के सामने भी इमोशनली नेकेड नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ छिपाकर रखता ही है। लेकिन फिर अचानक कहानी में वो मोड़ आता है जिसे डॉक्टर मैथ्यूज वो उसे कॉस्मिक ट्रॉमा कहते हैं
की शुरुआत।
और यहीं पर वो तुलना आती है जिसने मुझे सच में सबसे ज्यादा चौंका दिया। मतलब नोट्स उस फल खाने की घटना की तुलना पर्ल हार्बर, जेएफके के असैसिनेशन या 9/11 से कर रहे हैं।
ये सुनने में बहुत एक्सट्रीम लगता है।
थोड़ा नहीं, बहुत एक्सट्रीम। रुकिए एक मिनट, एक बगीचे में फल खाने की तुलना 9/11 से कर रहे हैं, ये तुलना थोड़ी अतिशयोक्ति या एग्जैजरेशन नहीं लग रही?
मैं समझती हूँ कि ऐसा क्यों लगता है, लेकिन जब कोई बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रॉमा होता है तो उसका असर सिर्फ फिजिकल डैमेज तक सीमित नहीं रहता,
वो डीपली साइकोलॉजिकल होता है।
बिल्कुल, डॉक्टर मैथ्यूज यहाँ फिजिकल कैजुअलिटीज की बात नहीं कर रहे, वो रियलिटी के स्ट्रक्चर में आए उस भयानक फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं।
तो वो उस बदलाव को पॉइंट आउट कर रहे हैं।
हाँ, जैसे 9/11 से पहले एक ऐसी दुनिया थी जहां लोग कमर्शियल फ्लाइट्स में पूरी तरह से सेफ महसूस करते थे, उस एक दिन की घटना ने हमेशा के लिए दुनिया को पहले और बाद में बांट दिया।
हमारा दुनिया को देखने का चश्मा ही बदल गया.
एग्जैक्टली. अदन के बगीचे में जो हुआ वो सिर्फ एक नियम तोड़ना नहीं था, वो उस पूरे फैब्रिक का फटना था जिसे क्रिएटर ने बनाया था. ये उस ट्रस्ट का टूटना था जिस पर पूरी सृष्टि टिकी थी.
तो आप कह रही हैं कि ये उस रियलिटी के फाउंडेशन का कोलैप्स था. जैसे जैसे अगर ग्रेविटी अचानक काम करना बंद कर दे तो दुनिया कैसी होगी, वैसा ही कुछ साइकोलॉजिकल लेवल पर हुआ.
बहुत सही कहा आपने. ये कॉस्मिक लेवल पर रिश्तों का टूटना था, क्रिएटर और इंसान के बीच का रिश्ता, एक इंसान का दूसरे इंसान के बीच का रिश्ता और इंसान का नेचर के साथ का रिश्ता.
सब कुछ एक ही झटके में करप्ट हो गया.
हाँ, ये तीनों डायनामिक्स टूट गए. इसीलिए इसे कॉस्मिक कैटास्ट्रोफी कहा गया है. इसके बाद ह्यूमन एक्सपीरियंस हमेशा के लिए बदल गया. वो जो नग्न होने पर भी शर्म न होने वाली स्थिति थी ना,
वो मासूमियत हमेशा के लिए खत्म हो गई.
हमेशा के लिए. शर्म, डर, गिल्ट और खुद को छुपाने की टेंडेंसी, ये सारी चीजें पहली बार ह्यूमन साइकोलॉजी में एंटर कर गई. टेक्स्ट में लिखा है कि उन्होंने खुद को पत्तों से ढक लिया.
जो सिर्फ फिजिकल कवरिंग में ही थी?
नहीं, बिल्कुल नहीं. ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल शील्डिंग की शुरुआत थी जो आज तक हम सब कर रहे हैं.
यार ये तो बहुत ही प्रोफाउंड है. तो अगर ये इतना बड़ा साइकोलॉजिकल और कॉस्मिक शिफ्ट था तो ये हुआ कैसे? मतलब इस पूरी त्रासदी के पीछे एक नया किरदार था, सांप.
हाँ, द सर्पेंट.
हम बचपन से कहानियों में सांप के बारे में सुनते आए, लेकिन नोट्स में इसे जिस तरह एनालाइज किया गया है वो उस टिपिकल कहानी से बहुत अलग है.
बिल्कुल. डॉक्टर मैथ्यूज लिखते हैं कि सांप क्रिएटर के बराबर का कोई इंडिपेंडेंट राइवल नहीं है, वो कोई पैरेलल सुपर पावर नहीं है.
हाँ, क्योंकि एंशिएंट दुनिया की ज्यादातर माइथोलॉजी में तो ड्यूलिज्म होता है, मतलब एक अच्छाई का देवता है और एक बुराई का राक्षस, और दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है.
जैसे दोनों का पार लेवल बराबर हो, हॉलीवुड की फिल्मों में भी यही ट्रॉप इस्तेमाल होता है.
स्टार वॉर्स की तरह लाइट साइड और डार्क साइड.
एग्जैक्टली. लेकिन इन नोट्स की सबसे खास बात यह है कि ये इस आइडिया को पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं. बुराई कोई पैरेलल एंटिटी नहीं है जो क्रिएटर के ओरिजिनल डिजाइन को चैलेंज कर सके.
तो सांप भी
एक क्रिएटेड बीइंग है जो उसी क्रिएटर के अंडर है, वो ऑटोनोमस नहीं है.
लेकिन फिर यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में कोई बोलने वाला सांप था? मतलब मॉडर्न माइंडसेट के लिए एक बात करने वाले जानवर को इमेजिन करना थोड़ा अजीब है. क्या ये सिर्फ बुराई को दर्शाने के लिए एक मेटाफर है?
डॉक्टर मैथ्यूज के नोट्स बताते हैं कि जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन में इसे शैतान का ही मैनिफेस्टेशन या रिप्रेजेंटेशन माना गया है. रोमियो के लेटर में भी जिक्र है कि शैतान को कुचला जाएगा,
जो सीधे जेनेसिस के उस जजमेंट से लिंक करता है.
हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या कोई फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है. नोट्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है. कहानी में सांप के लिए तुम्हारे जीवन के सभी दिन जैसे कंक्रीट शब्दों का इस्तेमाल हुआ है.
अच्छा.
जो इशारा करता है कि एक हिस्टोरिकल रियलिटी थी, कोई हवा हवाई बात नहीं.
तो क्या ये ऐसा है जैसे मान लीजिए हम पोएट्री के बारे में बात कर रहे हो,
जो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है,
एक आइडिया है, लेकिन फिर कोई अचानक आपको एक असली कागज पर लिखी हुई कविता पकड़ा दे? मतलब सांप सिर्फ बुराई का कोई मेटाफोरिकल आइडिया नहीं था, वो ग्राउंड पर मौजूद एक रियल प्लेयर था.
एग्जैक्टली. वो एक एक्चुअल प्रेजेंस थी जिसने इंसानी इतिहास की धारा बदल दी, और यहीं पर इस टेक्स्ट का वो मिस्ट्री एलिमेंट सामने आता है. नोट्स हाईलाइट करते हैं कि टेक्स्ट इस बात का कोई साइंटिफिक या थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि बुराई आई कहां से.
मतलब क्रिएटर बुराई के होने की जिम्मेदारी नहीं लेता?
नहीं, वो ऑथर ऑफ ईविल नहीं है, लेकिन वो उस बुराई के कॉन्सिक्वेंसेस को मैनेज करता है, न्याय करता है.
ये ह्यूमन माइंड के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है,
क्योंकि हम हर चीज का ओरिजिन जानना चाहते हैं. लेकिन नोट्स इसी बात पर जोर देते हैं कि बुराई एक रियलिटी है जिससे इंसान को डील करना पड़ा.
और उस प्लेयर ने जो गेम खेला, सांप ने जो गेम खेला, उसका तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अगर हम चैप्टर 3 में टेम्पटेशन की साइकोलॉजी को देखें तो मुझे लगता है कि ये ह्यूमन माइंड के मैनिपुलेशन का सबसे पुराना मास्टर क्लास है.
बिल्कुल, उसकी चाल बहुत ही सटल थी.
सांप ने क्रिएटर के एक बहुत ही जेनरस ऑर्डर को, जो था तुम किसी भी पेड़ से खा सकते हो, एक बहुत ही नेगेटिव और कंजूसी भरे सवाल में बदल दिया. क्या सच में कहा है कि तुम किसी भी पेड़ से नहीं खा सकते?
क्योंकि टेम्पटेशन या प्रलोभन कभी भी सीधे तौर पर ये नहीं कहता कि आओ कुछ बुला करें या आओ खुद को बर्बाद करें. वो हमेशा शक पैदा करता है,
वो डाउट का बीज दोता है.
हाँ, सांप ने सीधा झूठ बोलने से शुरुआत नहीं की, उसने अथॉरिटी के इंटेंशन पर डाउट क्रिएट किया. उसने कहा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान मिल जाएगा।
और टेक्निकली देखा जाए तो वो आधा सच बोल रहा था।
आधा सच जो पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। इंसान की मासूमियत सच में चली गई और उसे पाप का ज्ञान हो गया, लेकिन सांप ने वो सबसे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन छुपा ली
कि इस ज्ञान की कीमत मौत होगी।
एग्जैक्टली, मौत और अलगाव।
यार ये तो बिल्कुल आज के दौर की फेक न्यूज या मॉडर्न गैसलाइटिंग टैक्टिक्स की तरह काम कर रहा है।
हाँ, पैटर्न बिल्कुल सेम है। आप 10% सच लेते हैं, उसमें 90% झूठ मिलाते हैं और उसे इतना अट्रैक्टिव पैकेज बनाकर पेश करते हैं कि सामने वाला बिना सोचे समझे उसे सच मान ले।
वो सच का सिर्फ वो हिस्सा दिखाते हैं जो आपके फेवर में लगता है और कॉन्सिक्वेंसेस को ब्लर कर देते हैं।
लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रही है वो है स्त्री का रिएक्शन। उसने उस रूल में अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया। मांड में छूने की कोई मनाही नहीं थी, सिर्फ खाने से रोका गया था। ऐसा क्यों हुआ?
इंसान की साइकोलॉजी अक्सर ऐसी होती है। डॉक्टर मैथ्यू समझाते हैं कि जब हम किसी ईश्वरीय या मॉरल अथॉरिटी के नियम को समझते हैं तो हम कई बार उसे अपनी तरफ से और ज्यादा सख्त या रिलीजियस बनाने की कोशिश करते हैं,
शायद सेफ साइड पर रहने के लिए।
हाँ, शायद ये अशुद्ध चीजों से दूर रहने की किसी प्राचीन सोच का नतीजा था कि अगर खा नहीं सकते तो शायद छूना भी पाप है। लेकिन डेंजर यहाँ है जब आप नियम को खुद ही मॉडिफाई कर देते हैं,
जब आप उसमें अपनी तरफ से दीवारें खड़ी कर देते हैं,
तो उस पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ना और भी आसान हो जाता है। और इसका जो नतीजा हुआ, डॉक्टर मैथ्यूज उसे रिवर्सल ऑफ ऑर्डर या सृजन व्यवस्था का उलटना कहते हैं।
हाँ, ये रिवर्सल ऑफ ऑर्डर वाला पॉइंट नोट्स में बहुत ही डीप है। उनके मुताबिक ओरिजिनल ऑर्डर था सबसे ऊपर क्रिएटर, फिर पुरुष, फिर स्त्री और फिर जानवर।
एक हायरार्की थी जो हार्मनी बनाए रखती थी, लेकिन उस पल में उस एक चॉइस से सब कुछ पलट गया।
बिल्कुल, इंसान को जानवरों पर रूल करना था, उन्हें केयर करना था, लेकिन यहाँ एक जानवर यानी सांप ने स्त्री को मैनिपुलेट किया।
स्त्री ने पुरुष को लीड किया
और पुरुष ने क्रिएटर की बात मानने से इनकार कर दिया,
तो बॉटम ने टॉप को ओवरटेक कर लिया।
एग्जैक्टली, ये सिर्फ एक नियम टूटना नहीं था, ये पूरी सृष्टि का सिर के बल खड़े हो जाना था।
अगर हम इसे आज की मॉडर्न लाइफ और साइकोलॉजी से जोड़ें, तो क्या हम कह सकते हैं कि जब हमारे अंदर की लाइक एनिमल इंस्टिंक्ट्स, हमारी बेस डिजायर्स, हमारी बुद्धि और स्पिरिचुअलिटी पर हावी हो जाती हैं, तो हमारी लाइफ का ऑर्डर भी इसी तरह रिवर्स हो जाता है?
ये बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है।
हम अक्सर देखते हैं कि जब लालच या डर इंसान को चलाता है तो उसकी सारी रैशनैलिटी खत्म हो जाती है।
जब भी हायर ऑर्डर को लोअर ऑर्डर रिप्लेस करता है तो डिसऑर्डर पैदा होता है,
और जहां डिसऑर्डर होता है वहां कॉन्सिक्वेंसेस आने ही होते हैं।
हाँ, और चूंकि वो ओरिजिनल ऑर्डर टूट गया था तो अब एक नई टूटी हुई रियलिटी शुरू हो गई थी।
और जब इतनी बड़ी व्यवस्था टूटती है तो जाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने ही होंगे। हम अक्सर उस जजमेंट वाले हिस्से को सिर्फ एक क्रूर सजा की तरह देखते हैं,
पनिशमेंट की तरह।
हाँ, सांप को पेट के बल रेंगने और धूल चाटने का दंड मिला, जो कि एंशियंट दुनिया में हार और सबसे गहरे अपमान का सिंबल है। स्त्री को बच्चे के जन्म में दर्द का सामना करना पड़ा,
और पुरुष, जिसे शुरुआत में सिर्फ जमीन की देखभाल करनी थी, उसे अब पसीने की कमाई करनी होगी,
स्ट्रगल करना होगा और आखिर में उसी मिट्टी में मिल जाना होगा जिससे वो बना था।
लेकिन अगर आप नोट्स को ध्यान से पढ़ें तो इस जजमेंट में भी एक बहुत ही गहरी सिमेट्री है। हर किसी को उसके एक्शन के हिसाब से और उसी ऑर्डर में जज किया गया जिस ऑर्डर को उन्होंने तोड़ा था।
वाओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
और इससे भी बड़ी बात, उस जजमेंट के अंदर भी एक उम्मीद या ग्रेस छिपी हुई थी।
ग्रेस, वो कैसे?
स्त्री के जजमेंट में भयानक दर्द था, लेकिन साथ ही संतान पैदा करने और जीवन को आगे बढ़ाने का वो ओरिजिनल आशीर्वाद भी मौजूद था। पुरुष को स्ट्रगल करना था, लेकिन उसे अभी भी फसल मिलनी थी। क्रिएटर ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया,
बल्कि उस टूटे हुए ऑर्डर में भी सर्वाइवल का रास्ता दिया।
एग्जैक्टली,
और फिर आता है सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस, गार्डन से एक्सपल्शन, यानी उन्हें उस परफेक्ट माहौल से बाहर निकालना।
इसे हमेशा एक बहुत ही ट्रेजिक एंडिंग की तरह पेंट किया जाता है।
बिल्कुल, मानो भगवान ने गुस्से में उन्हें घर से निकाल दिया हो। लेकिन नोट्स में जो पर्सपेक्टिव है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। डॉक्टर मैथ्यू सजेस्ट करते हैं कि उन्हें बगीचे से बाहर निकालना असल में कोई क्रूर सजा नहीं थी,
वो एक दया थी, एक प्रोटेक्शन था।
राइट, सोचिए अगर उन्हें बाहर नहीं निकाला जाता, गार्डन के बीच में ट्री ऑफ लाइफ यानी जीवन का पेड़ था जो अमरता देता था।
अगर वो अपनी उस नई टूटी हुई पापी और करप्ट अवस्था में उस पेड़ का फल खा लेते
तो क्या होता?
तो वो हमेशा के लिए उसी हालत में अमर हो जाते।
हाँ,
मौत के बिना उस दर्द, उस गिल्ट, उस अलगाव और उस करप्शन का कोई अंत ही नहीं होता, वो इंसानियत के लिए हमेशा के लिए एक टॉर्चर बन जाता।
तो एक्सपल्शन असल में इंसान को उस भयानक इमोर्टैलिटी से बचाने का एक तरीका था। ये एक लिमिटेशन थी जो इसलिए लगाई गई ताकि इंसान हमेशा के लिए बुराई में लॉक ना हो जाए।
ये बहुत ही डीप थियोलॉजिकल पॉइंट है, डेथ को एक एंड पॉइंट बनाना ताकि सफरिंग हमेशा के लिए ना चले।
लेकिन इस पूरी घटना का आज के पैदा होने वाले इंसान पर क्या असर है, इसे समझाने के लिए नोट्स में रोमियो 5 और ओरिजिनल सिन या मूल पाप का जिक्र है। मैं हमेशा सोचता था कि मूल पाप का मतलब सिर्फ वो पहला काम है जो आदम और हव्वा ने किया था।
बहुत लोग यही सोचते हैं, लेकिन ओरिजिनल सिन सिर्फ एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। डॉक्टर मैथ्यूज एक्सप्लेन करते हैं कि ये पाप का वो सोर्स है, वो करप्ट नेचर है जिसके साथ अब हर इंसान पैदा होता है।
एक जेनेटिक म्यूटेशन की तरह?
हाँ, या एपिजेनेटिक्स की तरह, जो उस पहली घटना के बाद पूरी मानव जाति के डीएनए में, उसके मॉरल फैब्रिक में शामिल हो गया। हम सब एक टूटी हुई दुनिया में पैदा होते हैं, एक टूटे हुए स्वभाव के साथ।
और यहीं पर वो कॉन्सेप्ट आता है जो मॉडर्न माइंड को सबसे ज्यादा परेशान करता है, कॉर्पोरेट सॉलिडैरिटी।
ये कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा ट्रिकी है।
हाँ, क्योंकि ये समझना हमेशा से मुश्किल रहा है कि किसी और ने हजारों साल पहले कोई गलती की तो उसकी सजा आज मुझे क्यों मिल रही है। तो क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं जैसे हमारी नेशनल क्रिकेट टीम का कप्तान मैदान पर कोई बड़ा डिसीजन लेता है?
ओके, इंटरेस्टिंग।
मतलब अगर उसने कोई शानदार पारी खेली और वर्ल्ड कप जीता तो पूरा देश जीत का जश्न मनाता है, ट्रॉफी सबकी होती है।
बिल्कुल, हम सब प्राउड फील करते हैं।
लेकिन अगर उसने कोई ऐसा फाउल किया, कोई मैच फिक्सिंग या ऐसा कुछ जिससे टीम डिस्क्वालिफाई हो गई, तो हम सब टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, भले ही बाकी 11 खिलाड़ियों ने या फैंस ने कोई गलती न की हो।
ये कॉर्पोरेट सॉलिडैरिटी को समझने का एक बहुत ही परफेक्ट तरीका है। आज की वेस्टर्नाइज्ड दुनिया में हम बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं, हम सिर्फ अपनी पर्सनल चॉइस और पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हैं।
लेकिन एंशिएंट माइंडसेट में ऐसा नहीं था?
नहीं, एंशिएंट माइंडसेट और बिब्लिकल वर्ल्ड व्यू में एक व्यक्ति पूरे समुदाय को, पूरी रेस को रिप्रेजेंट कर सकता था। आदम पूरी मानव जाति का वो कप्तान था, वो फेडरल हेड था।
उसके एक्शन ने हम सबको अफेक्ट किया।
उसने जो डिसीजन लिया वो पूरी ह्यूमैनिटी के बिहाफ पर था।
तो अगर हम आदम के कारण इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, तो क्या वापस एंट्री का कोई रास्ता नहीं है? क्या ये पूरी कहानी सिर्फ एक ट्रेजेडी पर खत्म हो जाती है?
यहीं पर नोट्स एक बहुत ही क्रिटिकल कंट्रास्ट पेश करते हैं, अंतिम आदम यानी इशू की बात।
अच्छा,
जिस तरह पहले रिप्रेजेंटेटिव के एक्शन से वो टूटा हुआ नेचर और मौत सब में फैल गई, उसी तरह एक नए रिप्रेजेंटेटिव के परफेक्ट ओबीडियंस से जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो ग्रेस और रेस्टोरेशन पा सकते हैं।
मतलब कॉर्पोरेट सॉलिडैरिटी का नियम यहाँ भी लागू होता है।
एग्जैक्टली। तो डॉक्टर मैथ्यूज हमें बता रहे हैं कि ये सिर्फ तबाही की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़े कॉस्मिक रेस्क्यू मिशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। जजमेंट के अंदर ही ग्रेस का प्रोविजन दे दिया गया था।
ये सच में चीजों को देखने का नजरिया बदल देता है।
आज जब हम अपने आसपास इतना केओस देखते हैं, दुनिया भर की परेशानियां,
जियोपॉलिटिकल क्राइसिस देखते हैं, अपने सबसे करीबी रिश्तों में जो स्ट्रगल हम फील करते हैं, या रात में अकेले होने पर खुद अपने अंदर की डार्कनेस और बुराई से लड़ते हैं, तो ये नोट्स हमें एक फ्रेमवर्क देते हैं
कि ये सब कहां से और कैसे शुरू हुआ।
बिल्कुल, ये हमें हमारे वर्तमान दर्द का एक कॉन्टैक्ट देता है।
और ये फ्रेमवर्क हमें ये भी याद दिलाता है कि हम जिस दुनिया को आज नॉर्मल समझते हैं वो असल में पोस्ट फॉल या पतन के बाद की दुनिया है।
हाँ, वो ओरिजिनल डिजाइन नहीं है।
हम अक्सर पूछते हैं कि दुनिया इतनी खराब क्यों है, लेकिन नोट्स बताते हैं कि दुनिया खराब नहीं है, दुनिया ब्रोकन है।
ब्रोकन है, राइट।
हमारी सारी एंग्जाइटीज, रिश्तों की खटास, ये सब उसी ओरिजिनल फ्रैक्चर, उसी कॉस्मिक ट्रॉमा का नतीजा है।
यार, ये बहुत ही माइंड ओपनिंग कॉन्वर्सेशन था, लेकिन जाने से पहले एक थॉट है जो मेरे दिमाग में आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग आज हमें सुन रहे हैं वो इस पर विचार करें।
क्या है वो?
हमने बात की कि कैसे इंसान को ट्री ऑफ लाइफ से दूर रखने के लिए, ताकि वो अपने पापी और करप्ट रूप में अमर ना हो जाए, क्रिएटर ने स्वर्गदूतों और एक धधकती हुई तलवार का पहरा लगा दिया था।
हाँ, एक प्रोटेक्शन के तौर पे।
अब जरा आज की दुनिया को देखिए, हमारे अरबपति टेक जायंट्स, जेनेटिक्स के बड़े बड़े साइंटिस्ट, पूरी की पूरी एंटी एजिंग इंडस्ट्री, सब मिलकर मौत को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं।
ओह वाओ,
है ना? वो सेल्युलर एजिंग को रिवर्स करना चाहते हैं, कॉन्शियसनेस को अपलोड करके अमर होना चाहते हैं। क्या हम आज भी हजारों साल बाद अनजाने में ही सही उस धधकती हुई तलवार को डॉज करके वापस उसी ट्री ऑफ लाइफ को हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं?
ये बहुत ही डरावना सच है।
और सबसे डरावना सवाल यह है, अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो क्या हम उसी टूटी हुई करप्ट अवस्था को हमेशा के लिए लॉक नहीं कर देंगे जिससे बचाने के लिए हमें उस गार्डन से निकाला गया था?
ये बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है।
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सब आराम से सोच सकते हैं। इस डीप माइंड बेंडिंग और विचारोत्तेजक कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।